हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। बॉम्ब ब्लास्ट में घायल होने के बाद आंशी हॉस्पिटल में थी। उसकी देखभाल के लिए अमन उसके पास था। अमन के आंशी को बटरफ्लाई कहने पर वो चौंक गई। अपनी बात कहकर अमन वहाँ से बाहर जाने लगा, जबकि आंशी अभी भी सकते में थी। उसने अमन को रोकने के लिए आवाज़ लगाई, रुको तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ आओ, मुझे बात करनी है। भूख सिर्फ तुम्हें ही नहीं लगती बटरफ्लाई, मैं भी इंसान हूँ। अमन जानबूझकर आंशी को बार बार बटरफ्लाई नाम से बुला रहा था। उसके ऐसा कहने पर आंशी गुस्सा हो गई। अमन बाहर चला गया। गुस्से में आंशी ने उसके पीछे से पास रखी छोटी पानी की बोतल फेंकी। समझता क्या है ये खुद को, मैं कोई बटरफ्लाई नहीं हूँ, मेरा नाम आंशी जिंदल है, सुना तुमने? आंशी जोर से चिल्लाई। अमन वहीं कमरे के बाहर दूसरी तरफ खड़ा था। आंशी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो उसके चेहरे पर हंसी थी। हाँ सुना मैंने, अगर तुम बटरफ्लाई नहीं हो तो मैं भी कोई सीक्रेट एजेंट नहीं हूँ, चलो एक दूसरे पर शक शक खेलते हैं। तुम अपनी सच्चाई मुझे बताओ, तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैं अपनी सच्चाई तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ, मिस आंशी जिंदल। अमन मुस्कुराते हुए वहाँ से खुद के लिए खाना खाने के लिए चला गया। वो काफ़ी देर तक नहीं लौटा तो उसका इंतज़ार करते हुए आंशी सो गई। लगभग एक घंटे बाद अमन वापस आया। आंशी को सोते देख उसने कहा, तुम बस सोते हुए ही मासूम लग सकती हो मिस जिंदल, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारे बिहेवियर को देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम्हारे अंदर कितना कुछ चल रहा है। लोगों के सामने डम्ब और जिंदा दिल होने का दिखावा करती हो, बाकी तुम अच्छे से जानती हो कि तुमने अपने अंदर कितने कुछ राज छुपा रखे हैं। अमन वहीं उसके पास कुर्सी पर बैठ गया। वो अपने साथ एक बुक लेकर आया था। आंशी के जागने का इंतजार करते हुए वो उस किताब को पढ़ रहा था। दोपहर के लगभग 3 बज रहे थे। डॉक्टर्स की टीम विधिक के वार्ड में थी। उसे होश आ चुका था और डॉक्टर्स उसे एग्जामिन कर रहे थे। विधिक बिल्कुल शांत लेटा था। उसे ठीक से कुछ याद आ नहीं रहा था कि आखिर में क्या हुआ था। उसके मन में कई चीज़ें चला रही थीं, वो सब याद करने की कोशिश कर रहा था। लास्ट में मेरी गाड़ी में था, मेले में मैंने उसे देखा और वहाँ गया, वो आदमी उसने मुझे अंदर जाने से रोका, वो मुझे नहीं मिली और मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। दिमाग पर जोर डालने की वजह से विधिक का बीपी लेवल बढ़ने लगा। डॉक्टर ने उससे कहा, मिस्टर राणा आप अपने दिमाग पर जोर मत डालिए, आप उस स्थिति में नहीं हैं, ये मत कीजिए वरना हमारे लिए आपकी सिचुएशन पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा, प्लीज़ हमारे साथ कॉपरेट कीजिए। विधिक ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, उसे जो भी याद आ रहा था वो उसे बड़बड़ाए जा रहा था। मुझे वो मिल गई थी, वो मेरे साथ की थी और उसके हाथ में कुछ था जिसमें बॉम्ब लगा था, वो मेरे साथ ही थी, कहाँ है वो ठीक है ना, मुझे उससे मिलना है। विधिक चिल्लाते हुए उठने की कोशिश करने लगा। उसके पैरों में चोट लगे होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। उठने की कोशिश में उसके शरीर में भयंकर दर्द उठा और वो जोर से चिल्लाया, सिस्टर जल्दी से इंजेक्शन तैयार करो, हमें इन्हें फिर से बेहोश करना होगा वरना इसकी सिचुएशन पर काबू पाना सच में मुश्किल हो जाएगा, डॉक्टर ने नर्स को इंस्ट्रक्शन दिया। मुझे कुछ मत करना, मैं ठीक हूँ, पर वो कहाँ है, उसे कुछ हुआ तो नहीं? विधिक ने चिल्लाकर पूछा। आप किसकी बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, आपको अकेले ही हॉस्पिटल लाया गया था, डॉक्टर ने बताया। वो विधिक को बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर सके। ऐसा कैसे हो सकता है, बेहोश होने से पहले मैंने उसे अपने पास पड़ा देखा था, फिर वो गायब कैसे हो सकती हैं? विधिक डॉक्टर से बात कर रहा था तभी तेजी दिखाते हुए नर्स ने उसे इंजेक्शन लगा दिया। कुछ ही देर में वो नींद के आगोश में था। डॉक्टर्स की टीम उसके साथ थी और लगातार उसे ऑब्जर्व कर रही थी। उसके बेहोश होने से उसकी हेल्थ कंडीशन थोड़ी बेटर हो रही थी। पता नहीं ये किसके बारे में बात कर रहा था, जरूर कोई खास ही होगी, तभी उसे खुद से पहले उसकी फिक्र हो रही है, डॉक्टर ने सोचा। वो वहाँ से बाहर आने लगा। डॉक्टर को बाहर आते देख शिवांगी जल्दी से उठी और उसके पास आकर बोली, डॉक्टर विधिक जी ठीक तो है ना? हाँ, अब उनकी कंडीशन स्टेबल है, हमें अगले 48 आवर्स तक ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, बाकी फिक्र की कोई बात नहीं। विधिक की हेल्थ अपडेट देने के बाद डॉक्टर वहाँ से जाने लगे, तभी उन्हें विधिक की बातें याद आने लगी। वो रुक कर बोले, आपका उनसे क्या रिश्ता है? हम दोनों दोस्त हैं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? शिवांगी ने हिचकिचाकर पूछा। फिर तो आप उस लड़की को जानती होंगी जिसके लिए मिस्टर राणा इतने परेशान हैं, वो बार बार उसके बारे में पूछ रहे हैं, क्या आप उन्हें बुला सकते हैं? डॉक्टर की बात सुनकर शिवांगी असमंजस की स्थिति में थी। वो समझ गई थी कि डॉक्टर हो ना हो विधिक की गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं। वो अब उनके साथ नहीं है। आप समझ सकते हैं, ऐसी कंडीशन में मैं उसे यहाँ नहीं बुला सकती हूँ। शिवांगी ने अपनी तरफ से टालने की कोशिश की। अगर पॉसिबल हो तो बुला लीजिएगा, वो जो भी है इनकी हेल्प रिकवर करने में हेल्प कर सकती है, कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। वहाँ की टीम से परमिशन लेने के बाद शिवांगी विधिक के पास बैठी थी, वो उसका ध्यान रख रही थी। उसके अलावा वार्ड में और कोई नहीं था। विधिक अभी भी बेहोश था। इस बार तो मैं भी चाहती हूँ कि ये होश में आए और असली क्रिमिनल्स का पता लगाएं। जिस हिसाब से रॉबिन और मेलिसा यहाँ पर आए थे, मुझे लगता है ये उन्हीं का किया धरा है। अब जब विधिक के इंजर्ड होने का पता चला तो साधु संतों की तरह उससे मिलने आ गए। शिवांगी विधिक के पास बैठी थी, तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पास कॉल आ रहा है। वो जल्दी से बाहर आई। ये कॉल एजेंसी से मिस्टर दत्त का था। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया था कि फेयर में जिसने बॉम्ब प्लांट किए थे वो गुंडे पकड़ गए हैं, मिस्टर दत्त ने कहा। और आपको क्या लगता है, क्या सच में उन लोगों ने वो सब किया होगा, शिवांगी ने पूछा। मिस्टर दत्त की बात सुनकर वो जरा भी हैरान नहीं हुई। मुझे भी यही लगता है कि किसी ने काफी सोच समझकर प्लान किया है। उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि अगर इसकी तहकीकात होगी तो क्या करना है। मैं कोशिश करूंगा कि उन गुंडों को पुलिस के बजाय स्पेशल सेल में ट्रांसफर किया जाए, ताकि उनके साथ अच्छे से पूछताछ की जा सके। कोशिश कीजिएगा कि यही हो। मुझे इस मामले में रॉबिन और मिनिसा पर शक है। बाकी आप कुछ करें या ना करें, लेकिन विधिक वो इस मामले की तह तक जाकर रहेगा। मुझे बस उसके होश में आने का इंतजार है। मिस्टर दत्त को सब कुछ बताने के बाद शिवांगी ने कॉल कट कर दिया। वो वापस विधिक के पास आकर बैठ गई। बाकी तुम अच्छे से जानती हो कि तुमने अपने अंदर कितने कुछ राज छुपा रखे हैं। लगभग एक महीने बाद, उस हादसे को लगभग एक महीना बीत चुका था। इस एक महीने में चंडीगढ़ शहर का माहौल शांत था। विधिक काफी हद तक रिकवर हो चुका था, लेकिन उसके पैर की चोट अभी भी ठीक नहीं हुई थी। वो व्हीलचेयर पर था। इस एक महीने में शिवांगी ने उसका पूरा ध्यान रखा। विधिक के खैर खबर लेने के लिए रॉबिन और मेलिसा उसके घर आने वाले थे। उसने उन दोनों को डिनर पर इनवाइट किया था। उनके आने से पहले विधिक अपने कमरे में उस दिन मेले की फुटेज से देख रहा था। उसमें उसने आंशी को देखा तो वो मायूस हो गया। हर बार यही होता है कि मैं तुम्हारी करीब आ जाता हूँ, फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि तुम फिर दूर चली जाती हो। ऐसा कब तक चलेगा? इस बार तुम बिल्कुल मेरे पास थी और हम दोनों फिर से एक होने वाले थे। लेकिन ब्लास्ट के बारे में सोचकर विधिक के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। उसने अपने पैर की तरफ देखा।
मैंने खुद को इतना लाचार कभी महसूस नहीं किया जितना इस एक महीने में किया है। आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें फिर से खो दिया, पर तुम चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में ये प्लास्टर हट जाएगा और मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। बस उस ब्लास्ट में तुम्हें कोई चोट न लगी हो, बटरफ्लाई, विधिक खुद से बातें कर रहा था। तभी शिवांगी ने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया। उसने जल्दी से टैबलेट ऑफ किया और तेज आवाज में कहा, आ जाओ अंदर। शिवांगी अंदर आई। डिनर की पूरी तैयारियां हो गई हैं। मुझे समझ नहीं आता आप उन्हें खाने पर क्यों बुला रहे हैं। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, वो मेरे साथ काम करते हैं। अब उन्होंने आने का बोल ही दिया तो मैं मना कैसे कर सकता था, विधिक ने नरमी से कहा। फिर वो कुछ सोचता हुआ बोला, तुम काफी दिनों से मेरे साथ इस घर में कैद हो, क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम कहीं बाहर घूमने जाओ? मन तो बहुत करता है, पर आपकी देखभाल करने के लिए भी कोई चाहिए होता है ना। जब आप ठीक हो जाएंगे तब हम दोनों साथ में कहीं घूमने जाएंगे, शिवांगी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अच्छा, मैं क्या सोच रहा था कि तुम्हें रॉबिन और मेलिसा पसंद नहीं है, और साथ ही मुझे उनके साथ कुछ प्रोफेशनल बातें भी करनी है। मैं चाहता हूँ तुम कहीं बाहर घूम आओ। आपको डर है ना कि हम आपकी पर्सनल बातें ना सुन ले? शिवांगी वहाँ से जाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने बहाना बनाया। ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं नहीं चाहता कि वो दोनों यहाँ आए तब तुम यहाँ मौजूद रहो। ठीक है, फिर हम आपसे वादा करते हैं कि हम अपने कमरे से बाहर भी नहीं आएंगे। आप अपने गेस्ट को अच्छे से अटेंड कर सकते हैं, लेकिन हम आपको इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। शिवांगी ने बाहर जाने से साफ इनकार कर दिया। मुझे अच्छा नहीं लगेगा जब तुम कमरे में बंद रहोगी। मैंने दीप्ति को आने का बोल दिया है, तुम दोनों साथ में कहीं घूमने चली जाना। शिवांगी के ना कहने के बावजूद विधिक ने सारे अरेंजमेंट पहले से ही कर रखे थे। उसने ड्रॉअर से एक क्रेडिट कार्ड निकाला और शिवांगी के हाथ में रखते हुए बोला, अपने लिए शॉपिंग कर लेना, जब सब हो जाए तो दीप्ति से बोलकर मुझे कॉल कर देना, मैं गाड़ी भिजवा दूंगा। विधिक ने शिवांगी के सामने ना कहने का ऑप्शन नहीं छोड़ा। मजबूरी में शिवांगी को हाँ कहनी ही पड़ी। वो अपने कमरे में तैयार होने के लिए आई। इतने दिनों से मैं वेट कर रही थी, ये लोग मिलेंगे तो मैं साथ रहूंगी। इतनी मुश्किल से ये मौका हाथ लगा था, ये लोग घर पर मिल रहे हैं और ये है कि मुझे बाहर भेज रहा है। मेरे पास तो इसको कोई ऐसा इक्विपमेंट भी नहीं है जिससे मैं इनकी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकूं। शिवांगी परेशानी में इधर उधर टहल रही थी। कुछ देर बाद लावण्या वहां आ चुकी थी। उसने शिवांगी को आवाज़ लगाई, तब वो जल्दी से कपड़े बदलकर बाहर गई। अपना ख्याल रखना और खूब एंजॉय करना, विधिक ने उसे जाने से पहले कहा। शिवांगी दीप्ति के साथ वहां से जा चुकी थी। दोनों साथ में नीचे गाड़ी में मौजूद थीं। दिव्याना ने गुस्से में कहा, वो रॉबिन और मेलिसा के साथ मीटिंग करने वाला है। इस दिन का मुझे कब से इंतजार था। बहुत स्मार्ट है वो, उसने मुझे बाहर भेज दिया। गुस्सा मत करो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, उसने तुम्हें खुली हवा में सांस लेने के लिए आज़ाद कर दिया, लावण्या ने सामान्य तरीके से कहा। मुझे उसी दिन आज़ादी मिलेगी जब वो अरेस्ट हो जाएगा। पता नहीं वो लोग वहाँ क्या बातें कर रहे होंगे। चलो अभी पता चल जाएगा कि वो क्या बातें कर रहे होंगे, लावण्या ने मुस्कुरा कर कहा और अपने फ़ोन में किसी एप्लीकेशन को खोला। जस ने मुझे ये दिया था, अब वो जो भी बात करेंगे वो हमें पता चल जाएगा। चलो घर चलते हैं, वहाँ दोनों आराम से खाना खाते हुए इनकी बातों को इंजॉय करेंगे। दिव्याना ने उसकी बात पर हामी भरी। वो दोनों लावण्या के घर आ चुकी थी। मेलिसा और रॉबिन अभी तक विधिक के घर पर पहुंचे नहीं थे। विधिक को शक न हो इसलिए लावण्या ने उसके कार्ड को यूज करते हुए खाना और बाकी चीजें ऑर्डर की। वहीं रात के लगभग 9 के करीब रॉबिन और मेलिसा विधिक के यहाँ पहुँच चुके थे। वहाँ आते ही मेलिसा ने इधर उधर देखा तो उसे शिवांगी कहीं दिखाई नहीं दी। वो लड़की कहाँ है जो तुम्हारे साथ रहती है? वो घूमने के लिए गई है। हाँ, किसी सेफ जगह पर गई है जहाँ किसी ने बॉम्ब प्लांट नहीं किया होगा, विधिक ने मुस्कुरा कर कहा। मेलिसा और रॉबिन उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। विधिक को शक न हो इसलिए मेलिसा ने बात को संभालने के लिए कहा, हाँ पिछले एक महीने से सब शांत है, तुम एक बार ठीक हो जाओ फिर हम आगे की प्लानिंग कर लेंगे। वैसे भी उन्होंने हमें एक साल का टाइम दिया था। अच्छा, तुम लोग मेरे ठीक होने का वेट कर रहे हो, मुझे तो लगा चोरी छुपे दोनों अलग से भी काम करते हो, विधिक काफी सख्त लहजे में बात कर रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट थी जो रॉबिन और मेलिसा के मन में डर पैदा कर रही थी। 4.50 क्या लगता है आगे क्या होगा? पाठ पढ़कर समीक्षा जरूर कीजिएगा।